تفسير دكتة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے. کیا ہوا ان میں؟ ورثوا الکتاب, کہ وہ کتاب الہی کے وارث ہوئے. کتاب کا وارث ہو کے تو انسان کو بہت ہی خوبصورت ایٹیٹیوڈ شو کرنا چاہیے تھا, لیکن ان بدقسمت لوگوں نے کیا کیا؟ یاخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا, کہ اس دنیا دنی کے فائدے سمیٹنے لگے, اور جب ان سے کچھ کہا جاتا, مثال ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو, کتاب پڑھ کر اللہ کے دین کو سیکھ کر یا اللہ کے دین سے نسبت جوڑ کر تم اب کیا کر رہے ہو کہ دنیا کے فائدے لے رہے ہو, تو اس کے جواب میں کہہ دیتے ہمیں امید ہے کہ ہم بخش دیے جائیں گے, یعنی اللہ ہمیں معاف کر دے گا. جیسے ہمارے ہاں کسی کو آپ کوئی گناہ کرتے ہوئے روکیں ٹوکیں تو کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. آپ ہائی لائٹ کر لیجئے, سیغفر لنا کا جو لفظ ان کا ہے نا وہ بھی یہی ہے, اللہ معاف کر دے گا جی, وہ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ نقطہ نواز ہے, اور وہ ایسا ہے ویسا ہے. اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے, اس کا اندر کہ ان کو اللہ کا خوف آ گیا, لیکن پھر کیا آتا ہے؟ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ, اور اگر پھر دوبارہ وہی دنیا کا سامان ان کے سامنے آتا ہے, یعنی پھر کوئی دنیا کا فائدہ ہے, پھر کہیں دین کو پیچھے ڈالنا ہے, پھر کہیں اسلام کو پیچھے ڈال کر دنیا کا کوئی ناجائز فائدہ لینا ہے, تو یا خزوہ, پھر اس کو پھر لے لیتے ہیں, پھر لپک کر اس کو لے لیتے ہیں. یعنی یہ کھیل ہے ان کا, یہ کہنا کہ اللہ معاف کر دے گا اور اب نہیں کریں گے, یہ صرف ایک دھوکہ ہے جو وہ خود کو دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھول چکے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے ان کو پھر وعدہ یاد دلاتے ہیں. الم یوخص علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولون علی اللہ الا الحق, کیا ایسے بدقسمت لوگوں سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا کتاب میں کہ یہ حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ودرسوا ما فیہ, یہ تو پڑھتے پڑھاتے تھے جو کچھ اس میں ہے, یعنی یہ کہ جاہل لوگ اب نہیں ہیں, یہ علم کو جانتے ہیں, یہ درس و تدریس سے منسلک لوگ ہیں, ان کو سب پتہ ہے اللہ کی کتاب ان سے کیا چاہتی ہے, یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے, پھر بھی جب زندگی کا کوئی فائدہ آتا ہے, کوئی دنیا کا کوئی فائدہ آتا ہے, تو یہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کو بتا دو کہ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ, کہ آخرت کا گھر تو اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے بہتر ہے. اور کیا افلا تعقلون, کیا تم اتنی چھوٹی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ بہت زبردست آیت ہے. پیچھے ہم نے بنی اسرائیل کا قصہ پڑھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جس نے دھوکے سے مچھلیاں پکڑی, اللہ کو ٹریک کرنا چاہا, کیا سب کچھ ہفتے کو, لیکن ثابت یہ کیا کہ جمعہ اور اتوار تھا, اصل میں ہفتے کو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ایسا عبرت ناک عذاب بھیجا جس کو بندر بنائے جانے کا عذاب ہم سمجھتے ہیں. کچھ عرصہ تک تو قومیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پکڑ پر تھوڑا سا جمی رہتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ واقعی بھائی ہم جو بھی غلط کر رہے تھے اسی کی وجہ سے تو ہم پہ یہ سزا پڑی, لہٰذا اب ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی قوم کسی غلط کام کے نتیجے میں اللہ کے عذابوں کا شکار ہوتی ہے نا, تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دل دوبارہ سخت ہونے لگتا ہے. اسی لیے فرمائے فخلف من بعدہم, ان کے پیچھے آئے. خلف کے لفظ کو تھوڑا سا سمجھیے گا, یہ تھوڑا سا توجہ چاہتا ہے. دیکھیے خا لام فا, اردو میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں نا, مخالفت, اختلاف, ہاں خلف, آپ کا خلف جانشین, تو خلف کہتے ہیں پیچھے کو, جیسے من بین ایدیہم و من خلفہم, آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں. اچھا اب جب آپ اس کے لفظ کو یہاں دیکھیں, یہاں کیسے آیا ہے, خا لا فا, ٹھیک ہے. اب ان دونوں کو دیکھیں, ایک ہے فا خلفا, پھر من بعدہم کے بعد کیا آیا ہے, خلف. فرق کیا دونوں لفظوں میں, ذرا غور سے دیکھیے. پہلا لام پہ زبر ہے اور دوسرے پہ لام پہ جزم ہے. تو خالفا جب ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے اچھے وارث, یعنی کسی کے بعد ان کے بچے اچھے وارث بنے. لیکن جب خال لام پہ جزم اور فا ہو تو نا اہل وارث کے معنوں میں آتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا تم نا اہل ہو, تم سے تو ویسی اولاد اچھی تھی, ٹھیک ہے, اور وارث کا لفظ وراثت، میراث کی صورت میں اردو میں پڑھتے ہیں، کہ وہ چیز جو مرنے والے کے بعد کسی زندہ کو ملے. یہاں مراد ہے کہ اللہ کے نبیوں کے جانے کے بعد پیچھے والے لوگوں میں سے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، کہ کتاب کی وراثت کا حق نہیں ادا کیا لوگوں نے. ان کا حال کیا تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کی کتابوں سے جوڑتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جب ذرا دنیا کا کوئی فائدہ آتا تو اس کو چھوڑ دیتے. اصل میں یہ دین والوں پہ اور کتاب والوں پہ اور علم والوں پہ تنقید ہے. ہم دوسروں کو چھوڑ دیں، جو کلبوں میں پھر رہے ہیں، جو بازاروں میں پھر رہے ہیں، جو نائٹ کلبس میں پھر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیں. یہ آج کا پورے کا پورا سبق ہم سب کے لیے. آپ بس یہ کہہ لیں یہ میرے لیے، کیونکہ اللہ نے مجھے بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہے، یہ قرآن کو چھوٹی نعمت تھوڑی ہے. اور اگر اس کو پا کر رویہ اور طریقہ کار وہی ہو جو بیچارے ان پڑھ اور دوسرے لوگوں کا ہے، ان پڑھ سے مراد وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، تو پھر میرے اور ان میں فرق کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک آئینہ دکھاتے ہیں کہ پچھلے دور میں بھی یہی ہوا کہ جب لوگ دین کی خدمت کرتے رہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب شمع سے دور ہوں تو اندھیرا پھیلتا ہے نا، اسی طرح کچھ دین سے جڑے ہوئے لوگ بھی بعد میں اس کتاب کا حق ادا نہیں کرتے. ورث الکتاب، کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ کسی کو کتاب کا ورثہ دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، ان کا ورثہ علم ہوتا ہے. اور العلماء یعنی علم جاننے والے، قرآن حدیث کو جاننے والے، یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. ذرا سوچئے کتنی بڑی بات ہے. ایک موقع پہ ایک صحابی تھے، تو انہوں نے لوگوں کو بازار میں ایسی بیکار بحثوں میں اور کاموں میں مبتلا پایا تو آواز لگائی، کہا لوگو تم یہاں کن کاموں میں پڑے ہو؟ فلاں مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی ہے، تم حصہ نہیں لوگے؟ لوگوں نے کہا اچھا. لوگ سوچے پتہ نہیں اللہ کے نبی کی کوئی چیزیں بٹ رہی ہیں، کوئی کپڑے، کوئی آپ کے ہتھیار یا کوئی اور چیز. بھاگے بھاگے گئے، دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. ہاں بس ایک عالم تھے، وہ لوگوں کو دین سکھا رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی کدھر وراثت بٹ رہی ہے، ہمیں آپ نے جھوٹ کہا؟ کہا نہیں، یہ دیکھو یہ علم کی صورت میں وراثت بٹ رہی ہے، اور تم کن دھندوں میں لگے ہوئے ہو؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے تعلق جڑنا ایک خوش قسمتی کی علامت ہے، اور اس ورثے کو پانا اور پاتے ہی رہنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. لیکن راستے میں مسئلے کیا آتے تھے؟ یا خزون اردا حاضل ادنا، ادنا کا لفظ یہاں دنیا کے لیے آیا ہے. ادنا دنوف سے ہے، دال نون واو اس کا روٹ ہوتا ہے. دنوف سے یا دنات سے حقیر چیز کو کہتے ہیں، اقرب کے معنوں میں. دو لفظ یاد رکھیے اس دنیا کو دنیا کہنے کے. نمبر ایک، دنیا اس لیے دنیا ہے کہ یہ ہمارے قریب ہے، آخرت پیچھے ہے، ابھی اس کو ہم نے نہیں دیکھا. دنیا ہم ہاتھ بڑھائیں جو مرضی لے لیں. اور دوسرا لفظ دنیا کے لیے جو ہے وہ حقیر کا معنی، ادنا قریب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی چیزیں جو ہیں اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا. ذرا سوچے سارا ہفتہ کس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ پڑھتے بھی ہیں اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ کچھ دنیا کمانے کے قابل ہو جائیں. الا ماشاءاللہ، مجھے نہیں لگتا کسی کو سائنس سے محبت ہے اس لیے وہ سائنس پڑھ رہا ہے، اور کسی کو کیمسٹری اور بایولوجی اور زولوجی پسند ہے اس لیے وہ پڑھ رہا ہے. لیکن پڑھتے بھی اس لیے کہ کیریئر بنانا ہے. پھر ویکینڈس پہ بھی کہاں بھاگتے ہیں؟ دولت کے لیے بھاگتے ہیں نا. شاموں میں جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ یعنی آج کیا انسان کا حال یہ نہیں ہو گیا کہ یا خزون اراد حاضل ادنا، اور خاص طور پہ دین چھوڑ کے دنیا لینے جائے انسان تو پھر اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے. اچھا اب جب چند لوگ جو ان کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہو، دنیا کی طلب اتنی اچھی لگی، تو وہ جا کے ان کو سمجھاتے ہیں کہ لوگو ایسا نہ کرو، تمہیں تو اللہ نے کتاب کا وارث بنایا، لوگ تو دنیا والوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں، تم تو مالک کائنات کی کتاب پڑھ رہے ہو. تو پھر آگے سے ان کا جواب کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، او کوئی بات نہیں، بخشے جائیں گے، ہمیں بخش دیا جائے گا، کوئی بات نہیں. کیا آج یہ مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہے؟ یعنی گناہ بھی کرتے جاتے ہیں اور گناہ کو توبہ یا بخشش کی امید پر پھر کرتے جاتے ہیں. جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، फिर इस भरोसे पर इसका इर्तकाब करते हैं कि हमारी तो किसी न किसी तरह से बख्शिश हो जाएगी, वो हम अल्लाह के बड़े चहीते हैं, वो हम उम्मते मोहम्मदिया में से हैं, हम सैयद हैं, फिर हमने 8 सुपारे भी तो पढ़ी ली हैं ना, अब बहुत कुछ तो हमें पता चल ही गया ना, और फिर देखो ना कि बाकियों ने तो इतना भी नहीं पढ़ा ना, और मैं तो पहले से तो कितनी अच्छी हो गई हूँ, पहले तो मैं कुछ तो इससे बहुत ख़राब थी, अब कुछ तो अच्छी हूँ। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं गलत फहमी का शिकार है। अच्छा चलो भाई ठीक है, कह दो भाई अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन वहीं यातिही मरदुम मिसलुहु याखुज़ूहु, फिर दोबारा कभी मौका आ जाता है उसी गुनाह का, फिर वही दुनिया लेनी पड़ती है, पूरी तौबा तिल्ला करते नहीं, अब नहीं किताब छोड़ेंगे, अब किताब के साथ जुड़े रहेंगे, अब छुट्टी नहीं करेंगे, अब इसको सीरियस लेंगे, लेकिन फिर अगले हफ्ते कॉल आ जाती है कहीं से कि आ जाइए और दुनिया मिल जाएगी आपको। देखिए हम में से कोई किसी के लिए तो काम नहीं करता, मिसाल है कि अगर एरोप्रेस से इधर, तो हम के देखो ना फिर मैं अगर जॉब पे ना गई तो एरोप्रेस वाले बेचारे क्या करेंगे, राइट? कभी हम में से किसी ने ये सोचा? हाँ यार इम्मी वालों को फिर कोई मेरे जैसा वर्कर ही नहीं मिलेगा, हम क्यों जाते हैं? अपने लिए जाते हैं ना। यही बात अल्लाह यहाँ बता रहे हैं कि दिल में जब दुनिया बसी होती है ना, तो इस हकीर दुनिया को पाने के लिए इंसान बाज़ दफ़ा हीरे मोतियों जैसी किताब छोड़ देता है, और फिर दोबारा मौका आता है तो दोबारा यही करता है। हम सब के लिए ये बात है, अल्लाह ताला ने हम सबको यहाँ एक पैगाम दिया है, और वो क्या है कि अगर चाहते हो ये किताब तुम्हारे दिल में आए, हम में से हर एक चाहता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका दिल चाहता है कि आपको ये किताब उर्दू में याद हो जाए, अरबी पढ़ें तो समझ आ जाए, कई दफ़ा आपको पढ़ के सुनाई है ना इधर, तो आपका दिल, मैं पूछूँ ना आपका दिल चाहता है आपको पूरी किताब उर्दू में नोश में याद हो जाए इंग्लिश में, आप कहेंगे जी, जहाँ कोई मौजू आए मसला है हमें फ़ौरन पता चल जाए ये कहाँ है, चाहते हैं ना। तो उसकी कीमत है यहाँ कि अरद हाजल अदना कम करना पड़ेगा। देखिए एक जगह है आपके से एक सूटकेस है, अगर आप उसको पहले से बेकार चीज़ों से भर चुके हैं, अब आपने बहुत कीमती चीज़ खरीद ली और आपको अपने साथ लेके जानी है क्योंकि आप यहाँ घूमने आए थे और आप वापस लेना चाहते हैं, अब नतीजा क्या होगा कि आप उस बेकार चीज़ों से सूटकेस भर चुके हैं, तो ये या तो ये कीमती चीज़ छूटेगी या उसमें से कुछ कम करना पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी के सूट केसेस भी बेकार अलम गलम चीज़ों से भरे हुए थे, अब किताब अंदर आ रही है तो किताब के लिए जगह बनानी पड़ेगी, वी हैव टू मेक द प्लेस। अच्छा कुछ लोग ऑर्गेनाइज होते हैं ना, वो उसी सूट केस में बहुत सलीके से ज़्यादा चीज़ें भी रख लेते हैं, ये सलीका किताब पढ़ने के बाद आ जाता है, कुछ नहीं दुनिया का आपका छुटेगा। आप सोचते इतना सामान का ढेर पड़ा हुआ ये सूट केस में कैसे आएगा, वजन तो इसका कोई नहीं है लेकिन फैलाव बहुत है और सूट केस एक ही अलाव है, क्या करूँ? आप किसी अक्लमंद को बुलाएं, वो देखिए कैसे सेट कर देगा, कहीं बड़ी चीज़ कहीं छोटी बिल्कुल पैरेलल कर देगा और सूटकेस की जिप बंद करेगा, आप कहेंगे हैं ये सब कुछ आ गया इसी में, मेरे से तो नहीं आ रहा था, ऐसा होता है ना। ये है टाइम मैनेजमेंट, जब हम अल्लाह की किताब पे आते हैं ना, वल्लाह ही सारी दुनिया उसी एक सूटकेस में पैक हो जाती है जिसमें सिर्फ अलम गलम डाला होता है, सलीका नहीं आता, प्रायोरिटीज़ नहीं है, वक्त का एहसास नहीं है, अपनी सेहत का नहीं पता, अपनी रातों की नींद का नहीं पता, अपने खाने पीने का नहीं पता, तो लिहाजा अगर चाहते हैं तो फिर कुछ तो पाबंदी लगेगी ना, लाभ इतना ही ख्वाहिशात लालच इस दुनिया का ये निकालना पड़ेगा। कोई मौका जाने नहीं देते वो लोग, अरदुम मिसलुहु, फजूल एक्स्ट्रा। आप देखिए कि वक्त है ना गुजर ही जाएगा, ज़िंदगी है गुजर ही जाएगी, कल और कुछ मिल जाएगा। आज एक चीज़ आती है सेल पे आती है, लोग यूँ भागते हैं कि आज ये ना मिली तो पता नहीं क्या होगा। कल यहाँ हमारे पास कोई सिस्टर आई, उनके साथ 3-4 बच्चे थे, तो उन्होंने वॉशरूम यूज़ करना था, तो कहने लगी बस में बैठना है तो बच्चों को वॉशरूम यूज़ करा ले। खैर आ गई ऊपर तो बात पूछा कहाँ से आई, कहती होल मलिया से आई हूँ ना। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा खैरियत थी, कहती वो इधर ये एरोप्रेस में सेल लगी हुई है ना, तो मैं सेल का साइन पढ़ के आई हूँ। मैं कहा अच्छा हमारे तो ये नेबर है, हमें तो पता ही नहीं क्या सेल पे है। एरोप्रेस पे शॉपिंग के लिए 4 बच्चों को लेके बस पे मियाँ बीवी आए हुए हैं शॉपिंग करने, है ना। अरदल हयात दुनिया, हाँ जिस चीज़ की कदर होती है इंसान उसके लिए आता है, तो ज़रूरत है इस बात की कि प्रायोरिटाइज किया जाए। जिसको कदर होगी वो नींद भी छोड़ेगा, वो अपने माल को भी छोड़ेगा, और वल्ला ही अल्लाह कोई चीज़ नहीं आपका लेता, सब कुछ वापस उसी सूटकेस में कर देगा। अपने आप को चैनलाइज करें, पहले बैठ के सोचे मेरी ज़िंदगी का गोल क्या है, मैं कहाँ भाग रही हूँ। ऐसे ही आप किसी को सड़क पे मोड़ रहे ब्लाइंडली गाड़ी चलाते देखें तो आप कहेंगे भाई तुमने जाना कहाँ है, आप देखे ना यहाँ खिड़की में खड़े होके नीचे आप एक गाड़ी को देखे, यूँ इधर से आई फिर इस राउंड अबाउट से घूमी फिर पीछे गई, फिर दो चार मिनट में घूम के फिर इधर आई, और आप देख रहे हैं ये एक घंटे से बंदा ऐसे ही चक्कर लगा रहा है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि भाई इसको जाना किधर है। पूछे उसको, भाई तुम्हें कहाँ जाना है, कोई रास्ता चाहिए ढूंढना है क्या? बैठ के खुद को सोचे, जब तक कोई बहुत बड़ी ज़रूरत ना हो बाजार ना जाए। ये भी एक टिप है आपके लिए, दुनिया की चीज़ें पहले घर से ख़त्म करें फिर बाहर से लें, रिसाइकल करना सीखें चीज़ों को। बाज़ दफ़ा हम एक डस्टबिन लेने जाते हैं और 100 चीज़ें और लेके आ जाते हैं। मैं इस चीज़ पे इस सख्ती से अमल करती हूँ, छोटे घर में हैं या बड़े में हैं, मैं कभी कोई ऐसी बेकार चीज़ नहीं लेके आ जाती कि जो मुझे लगे। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आज तो यहाँ इसकी जगह है, लेकिन कल मुझे अगर छोटे घर में जाना पड़ा या मुझे कहीं और जाना पड़ा तो ये सामान या तो फेंकूँगी ना, या फिर दूसरी जगह पे नहीं होगा। पहले घर से देखो यहाँ क्या लग सकता है, इस बास्केट की जगह कोई बैग लग सकता है, कोई अच्छा शॉपर बैग रख सकता है, कोई ये कुर्सी मेज़ नहीं है तो कुर्सी नहीं है। हर चीज़ को एडजस्टमेंट में रखिए, आप देखिए कि आप ज़्यादा घर खूबसूरत होगा आपका। बस जब आप सिर्फ घर को चीज़ों से भर के सोचते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया थोड़ी हो तो अच्छी लगती है, जब बहुत हो जाती है ना तो फिर ये हमारे लिए गंदगी बन जाती है। अक्सर आप घर साफ़ करें आप देखें कि एक्स्ट्रा सामान ही निकलता है। जिन घरों में सामान ज़रूरत का होता है ना वहाँ इतना फैलता है, और फैले भी तो सिमट बहुत जल्दी जाता है। सिर्फ आप अपने धोने वाले कपड़े उठा के एक जगह पर रख दें तो आप देखेंगे कि आपका आधा घर साफ़ हो जाता है। सारे घर में क्या फैला होता है? बर्तन अगर आपके पास 20 गिलास हैं तो आपके 20 गिलास काउंटर पर पड़े हुए हैं, रखें 6, वही धुलेंगे वही इस्तेमाल होंगे, उतना कम फैलेगा। तो बाज़ दफ़ा हम ज़रूरियात पूरी करने जाते हैं लेकिन ख्वाहिशात लेकर आ जाते हैं, और वो घंटे जो हम घंटों के अतबार से सस्ती चीज़ें ढूंढने के लिए ले आते हैं, कितनी नमाजें चली जाती हैं, कितना दुनिया का दीन का नुकसान होता है, सारी दौलत देकर वो वापस नहीं मिल सकता। तो यहाँ ना अहल लोगों की बात है, और अल्लाह से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला ऐसे नाअहल लोगों में ना करे। किताब की नाहल जानशीनी की वजह यहाँ बताई जा रही है कि अरहदा हाजल अदना, दुनिया का इकट्ठा करते लगते हैं। अब देखिए कि पीछे मूसा और फिरौन का किस्सा था ना, तो फिरौन वाले पढ़े लिखे थे लेकिन अल्लाह ने इनको नहीं चुना, जबकि बनी इसराइल ग़ुलाम थे, बेचारे मजदूर टाइप लोग थे, अल्लाह ने किताब की खिदमत के लिए उनको चुना क्योंकि उनके पास दुनिया इतनी नहीं थी। लेकिन वक्त गुज़रते ही उनकी नस्लों में भी गैर संजीदा लोग आ गए और इस दुनिया को लेकर चल पड़े। कभी भी इस बात पे गौर करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आप सोचेंगे कि वाकई हकीकत ये है कि मैं इस दुनिया के पीछे अपने आप को इस तरह फेर रही हूँ जिससे मुझे मिलना कुछ भी नहीं। ज़रूरत की हद तक इंसान ले, लेकिन जब दीन छोड़ के लेना पड़े तो फिर ये चीज़ इंसान के लिए एक बहुत ही तकलीफ़ की चीज़ होती है। फिर अल्लाह ताला कमेंट देते हैं इस कैफियत पे, अलम युखज अलैहिम मीसाकुल किताब, क्या इनसे किताब में कोई वादा नहीं लिया गया था? हाँ, क्या कि अल्लाह यकूल अल्लाह इल्लल हक, कि अल्लाह पर हक के सिवा कुछ ना कहना। यहाँ ख़ास तौर पे ये भी इशारा है कि बाज़ दीनदार दीन की बातें नरम करके बयान करते हैं ताकि लोग उनसे खुश रहें। एक तो है ना कि एक दुनियादार है, दुनिया लेने के लिए बंदा दीन छोड़ा हुआ है, लेकिन एक दीनदार है, मिसाल है कि एक शख्स है दीन सिखाता सीखता है, उसको हक बताना था लेकिन उसने देखा कि जब मैं हक बात बताता हूँ तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, या लोगों को वो दीन सख्त लगता है, या वो कहते हैं अच्छा जी फिर हम नहीं सुनते, हमें अमल करना पड़ेगा। वो कहता है लाओ फिर ऐसा करते हैं कि लोगों को ज़्यादा आसान बातें बता दें। तो नतीजा क्या होता है कि वो दीन को बदल लेते हैं, डाइल्यूटेड दीन। आप सोचें, माँ बच्चे को दवा पिलाती है तो बच्चा के हाय ये बड़ी कड़वी दवाई है, तो माँ के अच्छा कड़वी है, लाओ मैं इसके अंदर थोड़ा शरबत डाल देती हूँ, पतला कर देती हूँ, चीनी डाल देती हूँ, दवा का फ़ायदा नहीं होगा। हक किस हक है? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको कहा गया था कि अल्लाह पर झूठ ना बोलना, वह दरसू माफी ही, और वो इसको पढ़ चुके हैं जो कुछ इसमें है। दरअसा कलस पीछे भी हमने पढ़ा ना, सूरत अलराफ़ सूरत अलनाम में पढ़ा था। दरअसा कहते हैं निशान को, किसी चीज़ का निशान रह जाना, स्टेन रह जाना। दरअसत रीखुल आसार कहते हैं हवा ने निशानात मिटा दिए, महव कर देना, मतलब क्या कि किताब पढ़ के जो थोड़ा बहुत अमल आया था ना वो दुनिया की मोहब्बत ने सारा ख़त्म कर दिया। देखिए किताब से ताल्लुक़ ज़रा सा कमज़ोर होगा ना तो ये आपसे गिरेगी। आगे फिर ये पूरा वाक्य आने लगा इसके ऊपर एंड पे, इसलिए जितनी बात जहाँ हो जाए वही बेहतर है कि जितनी तेज़ी से ये कुरान अपने हमारे दिलों में आता है ना उससे तेज़ी से निकल जाता है। हदीस में एक कुछ दिन का आता है, कितने दिन, 40 दिन या 7 दिन या कुछ ऐसे हैं कि अगर कुरान से इंसान दूर रहे तो कुरान इंसान के दिल से ऐसे निकलता है जैसे सरकश घोड़ा या ऊंट अपने मालिक से रस्सी छुड़ा के भाग जाता है। शुरू में कुरान हम जब सुनते हैं ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है, हाई डिस्कवरी है, इतनी प्यारी आयतें, इतनी अच्छी हैं। फिर आप इसको पढ़ते हैं, फिर अपनी तौफीक के मुताबिक आप तर्जुमा याद करते हैं, आपको हर दिन इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, फिर आपको हल्की हल्की ग्रामर समझ आती है, फिर कुछ दो चार छः पारे पढ़ते रहते हैं तो आपका मिजाज बन जाता है, टेस्ट आपका मिलने लगता है। आप कहते हैं दूसरे कोई आपकी दोस्त आए, वो कहेंगे नहीं बड़ा मुश्किल है, आप कहते हैं नहीं इतना मुश्किल नहीं, मुझे सारा समझ आता है। अच्छा, ये तो है कैफियत आपके आने की, सीखने की, पढ़ने की। खुदा ना खास्ता आप एक वीक दो वीक आना छोड़ दें और आहिस्ता आहिस्ता याद पूरा करने के बाद दोहराई छोड़ दें या इस कुरान से इन टच ना रहें, तो आपको कहता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस क्या आती हैं। कभी भी आप उस कुरान पर नहीं रहते जो पढ़ने के दौरान होते हैं। पढ़ने के दौरान कुरान मीठा लगता है, अच्छा लगता है, मुश्किल नहीं लगता। जैसे किसी ने यहाँ एक दिन किसी क्लास में कमेंट दिया था कि कोई और नसीहत करे तो बुरी लगती है, लेकिन कुरान की नसीहतें मुझे कभी बुरी नहीं लगी। तो मैंने सोचा कि बात इन्होंने बड़ी सच कही है। कोई दूसरा मैं एक दिन नसीहत करे, दूसरे दिन करे, माँ ही क्यों ना हो तो मैं बुरा लगता है, हर वक्त ना मैं कहा करें, लेकिन स्टूडेंट ने कहा कि कुरान की नसीहत मुझे कभी बुरी नहीं लगी ना। तो अब आप देखिए कि अब अगर आपका ताल्लुक टूटता है, आप कहते थे हमने कुरान पूरा कर लिया, या बस अब देखो ना नौ पारे तो पढ़ लिया अब काफ़ी है, आप जब पीछे होंगे ना तो उसका नतीजा पता क्या निकलेगा, फिर आपको ये कुरान बिटर लगेगा, फिर कड़वा, फिर ऐसा ऐसा आप कहेंगे हाँ अच्छा क्या फ़र्क पड़ता है ना, स्काफ सर पे लपेटना कोई ज़रूरी है, मैं दुपट्टे ही खोल के ले लूँगी। पहले आप स्काफ को खुदा हाफिज़ कहेंगे, फिर उसके बाद आप कहेंगे क्या घर के ही तो मर्द है ना, क्या है सिर्फ कज़न्स ही है ना, चलो अब घर के अंदर कोई अगर मुलाजिम है। फिर आप ढीले ढाले होते 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 बिल आखिर कोई आपको कुरान की बात करेगा ना, फिर अगले स्टेप पर वो आपको रिजिड लगेगा। याद रखिए पहली दफ़ा आप कुरान सुन रहे हैं ना जब, तो आपको ये मीठा लग रहा है, आप कहते हैं नहीं मैं मानूँ ना मानूँ लेकिन बात सच है। एक दफ़ा पढ़ने के बाद ताल्लुक तोड़ेंगे ना, तो फिर बाद में जब ये बातें आपके कानों पे पड़ेंगी ना तो आपको रिजिड लगेंगी, हाँ छोड़ो ऐसी क्या बात है। जैसे मैं एक अक्सर मिसाल देती हूँ कि जब बारिश होती है ना, तो पहली बारिश जब सूखी मिट्टी पर पड़ती है तो खुशबू आती है मिट्टी से, ऐसे सुनी सुनी खुशबू आती है। हमारे दिल भी मिट्टी से बने हुए हैं ना, इस पर जब पहली दफ़ा कुरान पढ़ता है ना तो बड़ी मीठी मीठी खुशबू आती है, स्मेल। इस वक्त आप जितना भी अपने आप को दीन के साथ आगे कर लेंगी ना, ये आपका मुकद्दर है। एक दफ़ा आप किसी आयत से गुजर गई ना बग़ैर अमल किए, तो दोबारा जब बारिश पड़ेगी ना तो दिल सख्त हो चुका होता है। जैसे गीली मिट्टी सूखती है ना, सूख के जब ठंडी होती है तो आप देखें कि वो ठिकरी बन जाती है। दोबारा अल्लाह ही किसी को अमल लाए तो लाए। मतलब आप में से कोई सोच रहे होंगे ना नहीं मैंने अमल हर चीज़ पर करना है, ज़रा अभी मैं पूरा कुरान पढ़ लूँ, कभी नहीं करेंगे आप। मिसाल है सूरह अल-अराफ गुजर गई, आपने लिबास और हिजाब के मसाइल पढ़ लिए, आपको उसमें वाज़े इशारे मिल चुके हैं कि औरत क्या पहन सकती है क्या नहीं पहनती। अगर आपने अभी भी इस पर अमल नहीं किया ना, तो ना आप सूरह नूर में करेंगे ना सूरह अल-अहज़ाब में करेंगे, दिल सख्त हो जाएगा। अभी तो अल्लाह ने सिर्फ आपको अंदर पहनने के कपड़े बताए हैं ना कि औरत औरत के सामने कैसे पहनेगी, कल आपको अल्लाह मर्दों घर के मर्दों के सामने पहनने के सिखाएगा, फिर सूरह अल-अहज़ाब में घर से बाहर जाते हुए पहनने सिखाएगा, कभी नहीं पहनेंगे आप। ये लिख लें बात, इसके लिए इंसान को कदम कदम ले के साथ साथ चलना पड़ता है। इसीलिए तो अल्लाह करे वह दरसु माफ़ी ही, नसीहत ले चुके हो, भोले नहीं हो। और जो चीज़ रुकावट है वो दुनिया है, तो वद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीन यत्तकून, तकवा वाला घर उन्हीं के लिए खूबसूरत है जो कि इस दुनिया में बचते बचाते ज़िंदगी गुजारेंगे। अफला ताकिलून, क्या फिर तुम सोचते नहीं हो, तुम गौर नहीं करते अल्लाह ताला ने तुम्हें कितना प्यारा दीन दिया, तुम नहीं मानते। इसके बरक्स अब एक किरदार तुमने देख लिया ना, खोटा नाखल्फ, दुनिया का फ़ायदा देकर दीन का नुकसान करने वाला। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कौन है जिनके लिए आखिरत का घर है, पीछे बात हुई ना तकवा वाले, अल्लाह को तकवा वाले पसंद है, तब वहाँ उनकी डिटेल दी जा रही है। खैरुल लज़ीन यत्तकून कौन है, वल्लज़ीन युमस्सिकून बिल किताब, वो लोग हैं जो किताब को मजबूती से पकड़ लेते हैं। मस्क जैसे दांतों से कुचलियों से किसी चीज़ को पकड़ते हैं ना, ये नहीं छोड़ते, चिमटने के मानों में आता है, किसी चीज़ के साथ चिमट जाना, यानी जो मर्जी हो जाए उनको इस किताब को नहीं छोड़ना। और साथ ही साथ वह अकामुस्सलाह, नमाज कायम करते, नमाज भी नहीं पढ़ते सिर्फ बल्कि नमाजों को कायम रखते हैं। उस नमाज का जिस्म पर असर होता है, उनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ होता है। नतीजा क्या निकलता है कि वो अपने आप को कहाँ ले जाते हैं, اللہ تعالیٰ کی رضا مندی میں لے جاتے ہیں. تو کہا ان لا ندی اجر المصلحین, ہم بے شک ہرگز ضائع نہیں کرتے اجر اصلاح کرنے والوں کا. بڑی پیاری آیت ہے. ہم پڑھ کے پہلی آیت خوفزدہ ہو گئے تھے نا کہ اللہ کہیں پڑھ پڑھا کر ہم پھر نہ دنیا کی غفلتوں میں گر جائیں. اور یاد رکھیے جو جتنا اوپر جاتا ہے اتنی زور سے گرے گا, اتنی زیادہ چوٹ لگے گی. تو یہاں علاج بتا دیے کیا کرے پھر, تمسک بالقرآن بالکتاب. تورات کو انہوں نے چھوڑا, ان کے اوپر پابندیاں نہ لگیں, لگائی انہوں نے مارے گئے. آج مسلمان جب تورات قرآن پہ عمل نہیں کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, تو ان کو بھی کبھی بھی خیر نہیں ملے گی. اور یہاں دیکھیے کہ کتاب کا اور نماز کا تعلق بھی پتہ چلا ہے. جس بندے کی نماز نہیں ٹھیک ہوئی نا, وہ کتاب کے ساتھ زیادہ دن نہیں چل سکتا. مثلاً اگر آپ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھے تھے نا, چلیں 6 بجے کے وقت کا حساب لگا لیتے ہیں ایک اسٹینڈرڈ ٹائم, تو آپ 9 بجے کی قرآن کی کلاس میں بھی نہیں آئیں گے, حالانکہ یہ 3 گھنٹے بعد ہے. توفیق چھن جاتی ہے, اللہ آنے ہی نہیں دیتا. گیٹ آؤٹ, چلے جاؤ میرے گھر سے, مجھے نہیں ضرورت تمہاری. سوتے رہو, منحوسیت پڑتی رہے تم پہ. اٹھنا 12-1-2 بجے جب ظہر بھی چلی جائے گی. یہ ہے اللہ کا فیصلہ. کوئی کرتا ہے, کہتے ہیں نا کہ آنے والوں کو ہم شان بڑی دیتے ہیں, اور جو کیئر نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. اچھا, ایک یہ جو پیچھے بات آئی نا سیغفر لنا, یہ بعض دینداروں نے بھی لوریاں دی ہوئی ہیں. کیا کچھ نہیں ہوتا جی, اللہ معاف کر دے گا. کل ایک بڑا ہی بٹر ایکسپیرینس ہوا. بٹر سے مراد یہ کہ میری زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا. کسی دوسرے شہر کسی جگہ ہمیں جانا تھا, ایک ساتھی تھی, انہوں نے بڑی محبت سے وہاں کہا کہ آپ آئیے, تو کچھ لوگوں کو بتاتے ہیں وہاں اتنے مسلم بھی نہیں ہیں, دس اینڈ دیٹ. قصہ مختصر لمبی چوڑی کہانی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم چلے جاتے ہیں. ہم جب وہاں گئے نا, تو گھر کا ماحول کچھ اس قسم کا تھا کہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں, تو کچھ پڑھ رہی تھیں, ایسی درود شریف پڑھ رہی تھیں کچھ. جو ہی ذرا آگے گئے تو دیکھا اسی کمرے میں دوسری طرح مرد بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب اس سے ایک دم طبیعت میں بوجھ آیا کہ بالکل ایسے ہی سوچے جیسے یہ ہمارا ہال ہے نا, یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے, تو اس کو چھوٹا سا کر لے روم. بالکل چھوٹا سا روم تھا, تو اس حصے میں مرد بیٹھے ہیں اور یہاں سے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, یعنی کوئی بیچ میں پردہ بھی نہیں تھا. ہے ہم وہاں بیٹھ گئے سائڈ پہ. اب کیا کریں, ماحول کوئی نہیں, بچے چوں چاں چی کر رہے بہت کچھ. تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہہ پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ مرد بھی آتے ہیں, یہ وہ ہے نا. خیر, درس کا کیا موضوع بننا تھا, درس کی تو بات ہی نہیں تھی ابھی ہونی. ایک دم کیا ہوا کہ جوں ہی ہم بیٹھے, مردوں کی سائڈ سے آوازیں آئیں, راگ لگے. واللہ ہی میں نے کبھی بھی لائف میں اپنے اس طرح کا نہیں سنا. تھوڑا سا شاید میں نے ریکارڈنگ کی صرف یہ سوچ کے کہ یہ منظر کیا ہے جو مجھے اللہ نے آج دکھایا. یعنی ماحول کیا تھا, عورتیں مرد اکٹھے تھے, اور میرا خیال ہے جتنے مرد عورتیں تھے اسے دگنے بچے لگا لے ہوں گے وہاں. کوئی کسی کی آواز نہیں سن رہا. ہاں بلکہ سوری, جب میں گئی تو وہ جس سسٹر نے ہمیں بلایا, وہ بیچاری خود کہیں دوسری جگہ سے, وہ ایک بکلیٹ سے پڑھ کے عورتوں کو کچھ سنانا چاہ رہی تھی, قرآن کے 5 حقوق. یقین کریں وہ, میں ان کے بالکل ساتھ بیٹھی اور باقی میں نے کہا آپ کنٹینیو کرتی رہے تو آپ ایزی رہے. وہ پڑھ رہی تھی بالکل ان کے ساتھ, گھٹنے سے گھٹنا لگے ہوئے. ایک عورت تھی, اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو مسلسل بول رہا تھا, اور اس طرح چو چو کر کر کے اتنے کو حصے میں, آپ سوچے کہ اس روم میں اتنے کو حصے میں کوئی 20-25 عورتیں تھیں. کوئی عورت اس بیچاری عورت کی ایک بات نہیں سن رہی تھی, پیچھے بھی شور باہر بھی شور, اور اس وقت تک مردوں سے آوازیں نہیں آ رہی تھیں ہمیں. خیر وہ بیچاری نے سنایا, کسی نے نہیں سنا, لیکن انہوں نے اپنا بکلٹ پورا کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایسی ذکر ابھی کیا کہ یہ باجی آئی ہیں, یہ ہے وہ ہے نا. اتنے میں میں ایسی, میں نے کہا کہ یہاں تو ماحول کچھ نہیں, لیکن کوئی بات نہیں, میں ایسے باتیں کرتی ہوں نا. میں نے ایک سے حال پوچھا, دوسرے سے پوچھا. اس کے بعد کیا ہوا, اچانک ہمیں دوسری طرف سے آوازیں کیا آنے لگیں. یعنی اتنا جوش سے مردوں کی طرف سے وہ کچھ پڑھ رہے تھے, سب نے مل کے گانا شروع کر دیا. کوئی میلاد تھا یا کیا تھا یا وہ درود پڑھ رہے تھے. 15 منٹ کی ریکارڈنگ بھی اس میں ہو چکی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کہ اور کہیں اللہ ہو اور کہیں کوئی یوں جھومے. یعنی بالکل آپ دیکھیں کہ میرے جیسا اناڑی بندہ دیکھ کے ایک دم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی ریلیجس محفل ہے. مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ کوئی شادی کا ایک منظر کوئی ہوتا ہے نا کبھی, حالانکہ یہ نعتیں پڑھ رہے ہیں, بیچ میں نعتیں بھی ہیں, بیچ میں حمد ہے کوئی, پھر بیچ میں خود سے کچھ اس طرح سے آوازیں بنا رہے تھے. پورا ماحول ایسا ہو گیا, بالکل سمجھ نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے تو سب لوگ بھولے معصوم لگتے ہیں, یقین کریں. میں کہتی ہوں ان تک کوئی نہیں پہنچا کیا, اور جو کر رہے ہیں کرا رہے ہیں وہ کیسی لوریاں دے رہے ہیں. تو ایک عورت نے, وہ جو آنٹی نے بک قرآن کے 5 حقوق کی بات سنا رہی تھی نا, تو اس کے بعد ایک عورت نے ان سے سوال کیا, جی بھائی ایک سوال بتائیں کہ یہ قرآن کس کو سمجھ آ سکتا ہے, یہ تو جتنا سمجھیں اتنا مشکل لگتا ہے. तो जो आलमों ने किताबें लिखी हुई हैं वो उन्होंने कुरान से ही लिखी है ना, तो कुरान ही हम लोग समझ सकते हैं और कुछ नहीं होता, अल्लाह माफ़ करने वाला है। यकीन करें ये बात उनकी मैं सुनी, हालांकि उनको नहीं पता मैं कौन हूँ, बहुत ज़्यादा घुली मिली सी कोई महफिल थी, तो मैंने बाजी को इशारा किया कि चुप कर दे, मेरे बारे में नहीं आपने कुछ बताना। मैं वहाँ उसके जवाब में भी कुछ बोली नहीं, ना मैंने बोलना था ऐसे मौके पर कि जहाँ मौका नहीं था, कि इतना दिल सख्त हुआ हुआ था लोगों का कि वो कहते कुरान पढ़ना नहीं चाहिए, समझना नहीं चाहिए, जितना कुरान पढ़ते हैं उतना बात मुश्किल लगती है और कुछ नहीं होता, हम जो भी गलतियां करेंगे अल्लाह माफ़ कर देगा। तो सयुख फरुलना, जब ये लोरियां दी जाती हैं दीन वालों की तरफ से, फिर आप देखिए कि ये जो कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी इत्तफाक देखिए ऐसा दर्द जिसमें मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरा दिल बैठ रहा था कि ये इनको गुस्सा ना आ जाए, इनको गुस्सा आता नहीं है, लेकिन खिलाफ शरीयत और ऐसे काम जिसमें आपको अंदाज़ा थोड़ा सा आवाज़ों से भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहाँ बैठ के सुनना ऐसे लग रहा है जैसे कोई पीट रहा है अपने आपको, तो मुझे खौफ ये था कि अल्लाह ना करे इनको गुस्सा आ गया, उठ पड़े बोल पड़े क्या होगा, कि इतना खौफ आ रहा था ज़्यादा मुझे कि पता नहीं अभी क्या हो जाएगा ना, कि हम किसी तरह यहाँ से चलें। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि उनको कुछ नहीं पता, और इसके बाद उन्होंने कर करा के फिर खाना पीना था और घर चले जाना था। मैं सोचती हूँ कि मेरा इतना दिल दुखा होता है इस बातों पर, मैं कहती हूँ अल्लाह इन लोगों को कौन बताएगा। बेचारी ने कोशिश की लेकिन बात ही नहीं हुई, मैंने कोई बात नहीं की, मौका ही नहीं था, लोगों को हमारा इस तरह दिख रहा था, तो बाद में उन्होंने ये उनको कहा कि चूँकि औरतें मर्द इकट्ठे हैं तो बाजी नहीं बात कर सकती ना, इस तरह अच्छा नहीं लगता। यानी आप सोचिए कि आज हमारे पास यूमस से कूना बिल किताब कितना है, अकामुस सलात कितना है, और ऐसे ही मैंने बाद में बात करके अपने हस्बैंड से पूछा कौन थे कितने मर्द थे, ये नात कौन पढ़ रहे थे, ये कौन थे लीडर, तो उन्होंने कहा कि क्लीन शेव आदमी था कोई, सारे लड़के क्लीन, कहते जितने भी मर्द थे एक की थोड़ी दाढ़ी थी, बाकी सब क्लीन शेव मर्द थे, सुन्नत नहीं दाढ़ी नहीं, आपके पास इस्लाम पे अमल नहीं, सिस्टर साथ हैं, बल्कि इधर की औरतें उधर उनके अपने मर्द होंगे, एक दो सिस्टर्स को मुसलसल में देखा कि जब ये सब पढ़ पढ़ा रहे थे तो उधर देखे मुसलसल वो हंस के जैसे इशारों में बातें भी कर रही थी, यकीनन उनके हस्बैंड या भाई होंगे उधर कोई ना, तो बाकी भी तो उधर ही थे ना। तो मैं सोच रही थी कि ये तो ये करके आज बड़े खुश होकर जाएंगे कि चलो हमारा काफ़ी गुनाहों का बोझ कम हो गया, हमने पढ़ लिए नाते, अल्लाह के नबी क़यामत के दिन हमसे राज़ी हो जाएंगे, अल्लाह करे ऐसा ही हो, हम किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन याद रखिए यूमस से कून बिल किताब कितना है, हम किताब पकड़े हुए लोग अगर इसकी कदर नहीं करेंगे तो दूसरे कहाँ करेंगे। हमने उन्हें कहा फिक्र नहीं करें हम फिर आ जाएंगे, उन्होंने कहा अच्छा भाजी अगले हफ्ते हम फिर सिर्फ औरतों को बुलाते हैं, हमने कहा फिर आएंगे, कोई बात नहीं दूर है करीब है, हमारा वादा है आप जब बुलाएंगे हम आएंगे इंशाल्लाह बात करेंगे। एक औरत इधर आ गई, करी मैंने तो आपकी सीडी सुनी हुई है, मैं तो आपका दर सुनने आई हूँ, मैं तो इनकी रिश्तेदार भी नहीं हूँ और ये और वो, हमने कहा कोई बात नहीं ये नेट है ये कंप्यूटर की ये सब कुछ है, आप वहाँ घर से बैठ के सुन लें। यानी तरीके तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन याद रखिए कि जब उम्मत को इस तरह की लोरियाँ मिलती हैं ना कि तुम बख्शे जाओ अगर तुम तो बख्शे बख्शीश हो, तो फिर लोग किताब से नहीं जुड़ते, कम अज़ कम वीकेंड पर आके नहीं लोग बैठते, अपनी छुट्टी नहीं लोग ज़ाया करते, क्यों मुश्किल है ये। आप देखिए कि जो लोग स्टूडेंट्स वीकडेज में पढ़ते हैं ना, एक 5 दिन का मुसलसल कोर्स करते हैं, उनका एक माइंड बना होता है, उनका एक माइंड सेटअप बन जाता है। वीकेंड पे आप लोग अगर आ रहे हैं ना इधर, तो आपके लिए इस किताब के लिए आना ज़्यादा बड़ी बात है बजाय इसके कि जो वीकडेज में आए, क्योंकि आप फोकस नहीं है, यहाँ से उठ के आपने कल फिर स्कूलों कॉलेजों में जाना है, फिर 5 दिन वहाँ से धक्के खा के आना है, किसी दिन आप सैटरडे नहीं आएंगे, किसी दिन संडे नहीं आएंगे, किसी दिन दोनों दिन नहीं आएंगे, और इस तरह कटते पटते आप अखीर लुढ़कते रहेंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जो इन तकाज़ों को छोड़ देते हैं इसके बाद, फिर अल्लाह ही दोबारा ज़िंदगी में मौका लाए ना लाए, लेकिन इसका इंतकाम अल्लाह ज़रूर लेता है, ये बात आज ही लिख लें। हम जब अल्लाह की किताब की तरफ आते हैं, फिर अपने किसी दुनियावी फ़ायदे या दीन की किसी कुर्बानी के डर से छोड़ देते हैं ना, तो चाहे साल 2, 5, 10 साल बाद अल्लाह इसका बदला ज़रूर लेता है। फिर इंसान को एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी नेमत की नाकदरी की थी। जैसे आप दवा को बीच में छोड़ देना तो बाज़ दफ़ा रिएक्शन ज़्यादा सख्त होता है, तो यहाँ अल्लाह ताला ने यही बता दिया कि लोगों आखिरत को सामने रखो, फिर देखो कि वहाँ क्या होता है, और तुम्हें फिर वहाँ जाके जो मिलेगा फिर तुम्हें इसकी कदर आएगी कि तुमने अगर अपनी ज़िंदगियाँ किताब के लिए लगाई, अल्लाह ने एक एक लाइन का एक एक लफ्ज़ का अजर वहाँ रखा हुआ है, क्योंकि इन्ना ला नुदी अजरल मुस्लिहीन, हम इस्लाह करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करते, हम लोगों की नाकदरी करेंगे। दुनिया में आप कहीं काम करें तो कोई आपकी पे काटता है, लोग तो आपको एक एक आना पाई करके दे देते हैं, तो क्या अल्लाह के लिए आप कुछ करें तो क्या अल्लाह ताला आपके लिए छोड़ देगा, कभी नहीं करेगा। इसीलिए आप बीच में दोबारा बनी इसराइल के उसी मंजर को सामने रखा जा रहा है जिसमें उन्होंने तौरात की नाकदरी की थी, असल में आप देखें कि ये बिल्कुल नसीहत का बंदाज सा सा चलता जा रहा है। फरमाया व इस नतक नल जबल फौकहुम, और जब हमने उठाया पहाड़ को उनके ऊपर। नतक ना का लफ्ज़ जो है ना, नतका से है, नून ता काफ। नतका कहते हैं उखेड़ कर निकालना, जैसे रूट्स को निकाल देना किसी चीज़ की। आप सोचो ज़रा, पहाड़ जब अपनी जगह से उखड़ा होगा, कोहे तूर, तो कितना ज़बरदस्त झटका आया होगा। और ये कब हुआ था? जब उन्होंने तौरात को मानने से इनकार किया था। उन्होंने कहा हमने तो सोचा था ये बहुत आसान होगी, लेकिन ये तो बड़ी मुश्किल है। उनको किताब पे अमल करना पहाड़ जैसा मुश्किल लगा। अल्लाह ने पहाड़ को उनके ऊपर किया, फौकहुम कअन्नहु ज़ुल्लतुन, और गोया कैसे कर दिया जैसे वो साइबान था। वज़न्नु अन्नहु वाक़िउन बिहिम, और वो ये गुमान करने लग गए कि ये पहाड़ इनके ऊपर अब गिरी पड़ेगा। और साथ ही फिर अल्लाह ने डांटा, इसको हाईलाइट कर लीजिए, हुज़ू मा तैनाकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फीहि लअल्लकुम तत्तकून, पकड़ो जो कुछ इसमें है उसको कुव्वत के साथ, और नसीहत लो इसमें जो कुछ है ताकि तुम बच जाओ। बिल्कुल वही रवैया जो तौरात के नज़ूल के वक्त बनी इसराइल का था, आज बहुत सारे मुसलमानों का भी यही रवैया। दूर से किताब लेनी हो शौक से लेते हैं, कोई मर जाए सपारा सपारा पढ़ना हो बड़े शौक से लेते हैं, शादी से पहले कुरान खवानी करनी हो बड़े शौक से कर लेते हैं, रमज़ान आता है रोज़ के 5-6 सपारे पढ़ने हो शौक से पढ़ लेते हैं। लेकिन जब खुजू मा आते ना कुम भी कुवक का बात आती है, कहते हैं ये बड़ा मुश्किल है। लोगों को हमेशा किताब पढ़नी मुश्किल लगती है, कभी कभी पढ़नी अच्छी लगती है। पार्ट टाइम जॉब करेंगे किताब की, फुल टाइम नहीं इसको बनाते। अल्लाह ताला ने कहा पकड़ो। देखिए यहाँ आखिर में तत्तकून का लफ्ज़ आ रहा है, खुजू से लेके तत्तकून को पढ़ें तो क्या बात समझ आती है कि किताब के बग़ैर तकवा पैदा ही नहीं होता। आज किताब सुनने बैठे हुए ना तो आप अल्लाह का डर रखेंगे। इस वक्त अगर आप कोई फ़िल्म देख रहे होते हैं ना, चाहे वो बड़ी कोई नसीहत आमोज फिल्म होती, तो आपके दिल में तकवा नहीं आना था। और खुजू से पता चल रहा है कि पकड़ो, छोड़ी हुई है ना इसीलिए पकड़ो, जो छोड़ चुके उसको पकड़ो, और समझो वज़कुरू, समझो ताकि ना समझियाँ तुम्हारी ज़िंदगी की ख़त्म हो। और वज़कुरू से क्या पता चल रहा है, खुद भी याद करो और दूसरों को भी याद कराओ। क्या पता चला कि जब तक किताब को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे हिदायत नहीं मिलेगी। अगर कुछ भी करेंगे तो आप देखिए सबकी निजात हो जाएगी, और अगर कोई भी नहीं करेगा तो सब पकड़े जाएंगे। आज हमें अपने सारे काम अहम लगते हैं सिवाय इस किताब के, हमें से हर एक अपने आप को चेक करता रहा करे। अब मेरी छुट्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं, पहले क्यों नहीं हुई? अब मेरे रास्ते में रुकावटें क्यों आ रही हैं, पहले नहीं आई? अब मेरा इतना दिल नहीं लगता, पहले तो ज़्यादा लगता था। दिल की हालत को साथ साथ चेक किया करें। इस किताब के बग़ैर निजात मुमकिन नहीं। याद रखिए, दुनिया की किताबों को शौक़ से पढ़ें या मजबूरी से पढ़ें, वो चंद दिन की बात है। आप आज अगर 8th क्लास में हैं तो 7th क्लास की बुक्स आपके लिए बेकार हो चुकी हैं। पकड़ के उसको रद्दी में बेच देते हैं लोग। कुरान पढ़ा हुआ कभी रद्दी में नहीं जाता। आप अगर आज 9वें पारे पे हैं तो पहला पारा आज भी आपके लिए उतना ही अहम है जितना कि ये आज है। इसलिए इस किताब को शौक से लेना है, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमें इसको मजबूती से लेने की तौफीक दे। फिर इसके बाद देखिए कि बिकुव्वत, कुव्वत के साथ लेने का मतलब क्या है? हर किस्म के हालात में लिए रखो। खुशी आए तो भी इसको लो, गम आए तो भी इसको लो। तुम्हारी अपनी शादी है फिर भी इस किताब को लेके रखो, और अगर तुम किसी दूसरी शादी में जा रहे हो किसी की, फिर भी इस किताब को लिए रखो। ये नहीं कि सिर्फ दुखों गमों में इस किताब को पकड़ लो और खुशियों में इसको छोड़ दो। अब इसके बाद आयत 172 से अगली चंद आयात में एक हकीकी वाक्य है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपने बचपन का कोई वाक्य याद है, या मुझे याद है, बिलफर्ज हम किसी अपने से छोटे इंसान से कहें तो मैं पता है मुझे तुम्हारे बचपन का एक वाक्य याद है, तो एकदम उसके कान खड़े होंगे, क्या हुआ था, कैसे था, बताएं। और अक्सर लोग अपने बचपन की बातें बड़े शौक से सुनते हैं ना, हर एक को अच्छा लगता है। इस वक्त जो बात हम पढ़ने लगे ना, ये हम सब के बचपन की बात है। थोड़ी सी इसकी मैं आपको तमहीद बांध दूँ, फिर इसके बाद आयतों को एक साथ लूँगी कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो उनकी रूह के साथ क़यामत तक पैदा होने वाली सारी रूहों को अल्लाह ने पैदा कर दिया। ये लिख ले बातें। दुनिया में तो हम सब मुख्तलिफ वक्त में आ रहे हैं ना, जैसे बाप पहले आता है तो फिर उसके 20-25 साल बाद बेटा दुनिया में आता है, बेटी बाद में आती है माँ के। हमारे इस दुनिया में आने के लिहाज से हर एक की उम्र फ़र्क है। जैसे इस हॉल में बैठे हुए हम में से हर एक की उम्र दूसरे से फ़र्क है, ये हमारे जिस्म की बात है, लेकिन हम सब की रूहें हम उम्र हैं। हमारे यहाँ मारूफ बातें कहते हैं, ये तो बुढ़ी रूह है, तो हम सब की रूहें बुढ़ी हैं। क्यों? कि आदम अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हो चुके हैं। तो यहाँ जो वाक़या है, असल में ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने उनकी पुश्त पर हाथ फेरा था। कैसे फेरा था? गैब का मामला, जैसे हमने अल्लाह को नहीं देखा उस बात को भी नहीं देखा। जितने लोग दुनिया में क़यामत तक पैदा होने हैं ना, सबको अल्लाह ताला ने चींटियों की शक्ल में, एंट्स की सूरत में ज़मीन पर फैला दिया था। ठीक है, अब आप जहन में ले आइए, जैसे भी तसव्वुर आती है आता है, जब सब ज़मीन पर फैल गए ना, तो हदीस में आता है कि जो रूहें थी ना, हाँ, मुजन्नदा, लश्करों के लश्कर थे, जनूद लश्कर को कहते हैं, यानी जब सब बाहर आ गए, फिर अल्लाह ताला ने सबसे पूछा था कि अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। यानी तौहीद की पहचान, अल्लाह की मार्फत हम सब की रूहों के अंदर अल्लाह ताला ने इनग्रेव कर दी। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर एक चिप डालते हैं ना, तो सारी मेमोरी उसमें चली जाती है। आपको पता है कि ये कंप्यूटर की स्क्रीन तो कुछ भी नहीं है, आप अगर अंदर से ये सारा डाटा निकाल लें तो ये एक शीशे की स्क्रीन रह जाती है। हर इंसान के इंस्टिंक्ट में अल्लाह ताला ने ये बात डाल दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद क्या हुआ कि अंदर डाल दिया, वादा क्या लिया कि दुनिया में जब जाओगे किसको रब मानोगे? अल्लाह को मानेंगे। अल्लाह कितना है, कितने हैं? अल्लाह एक है। ये सब को अल्लाह ने डाल दिया और उसके बाद वापस उनकी रूहों में वो चले गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब जब बच्चा पैदा होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी, तो उसको वो वादा याद होता है। अगर आप कोई न्यू बॉर्न बेबी हो, उससे बातें करें, पूछो अल्लाह तो तुम्हारा खालिक कौन है, तो कहेगा अल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में बोले थे ना, सूरह मरियम में आप लोग पढ़ेंगे कि इन्नी अब्दुल्ला, उन्होंने ये जो लफ्ज़ कहा था ना कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ये इसी वादे की वजह से कहा था। वह इस अख़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम। और है नबी, लोगों को याद दिलाइए वो वक्त जब के आपके रब ने बनी आदम की पुश्तों से इनकी नस्ल को निकाला था, और क्या किया? वशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम, और इन्हें खुद इनके ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला शहिदना, उन्होंने कहा, ज़रूर आप ही हमारे रब हैं और हम इस पर गवाही देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, ये सब हमने क्यों किया? अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये वाक़या अगर हुआ था तो क्यों हुआ था, तो अब उसकी वजूहात। अन तकुलू यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हाजा गाफिलीन, ये हमने इसलिए किया कि क़यामत के दिन तुम ये न कह दो कि हम इससे गाफिल थे। यानी कहीं क़यामत के रोज़ ये ना कह दो कि हम इस बात से गाफिल थे। क्या मुराद है? कि तौहीद तो हमें किसी ने दी नहीं, हमारे पास तो कोई नबी आया नहीं। यानी एक किस्म का अल्लाह ताला ने उज़र तमाम किया क़यामत के दिन हर उस बंदे का, जिस तक हकीकत में दुनिया में कोई पैगाम देने वाला नहीं पहुंचता। हमारे जहन में ये सवाल आता है ना कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हमने शुरू से अपने घरों में यही देखा, तो एक ईसाई बच्चा या एक बेदीन बच्चा या एथियस्ट माहौल में पढ़ने वाला बच्चा जो है, वो कैसे मुसलमान हो? दिल में सवाल आता है ना, तो उसका जवाब है इधर कि हमने तो हर एक की फितरत में ये चीज़ डाल दी कि तुम्हें जिस ज़ात की तरफ बुलाया जाता है वो एक है, और उसके अंदर तुम्हें बता दिया, उज़र तमाम कर दिया। नंबर एक कि तुम क़यामत के दिन ये ना कह दो कि हमें तो किसी ने ये बताया ही नहीं कि अल्लाह है, और अल्लाह है तो फिर वो कैसे है, ये पहली वजह। दूसरी वजह अगली आयत में आ रही है, सेकंड रीज़न ऑफ दिस इंसिडेंस, कि औ तकुलु इन्ना माशरा का आबा उना मिन कबलू व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम, या फिर ऐसा भी ना हो कि तुम ये कह दो कि शिर्क तो हमारे बाप दादा हमसे पहले करते ही थे और हम तो उनकी औलाद थे। मुराद ये कि हमारा क्या कसूर है? मसलन अगर एक हिंदू धर्म में कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो कह सकता है ना कि अल्लाह, मैंने अपने बाप को भी बुत के आगे बैठे देखा, मैंने अपने दादा को भी देखा, तो फिर मैं कैसे तुझे मानता? हो सकती है ना ये क्वेश्चन। तो दूसरी वजह अल्लाह ताला ने ये बता दी کہ تم یہ نہ کہہ دو کہ ہمارے تو باپ دادا جو کرتے آ رہے تھے ہم وہی کر رہے ہیں، اور کیا افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو کچھ غلط کام کرنے والوں نے کیا تھا؟ کذالک نفصل الآیات ولعلہم یرجعون، اور اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں. یہاں پہ یہ بات پوری ہوتی ہے. اب اس کا خلاصہ دیکھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی روح ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، قیامت تک پیدا ہونے والے بچوں کی روحیں ریت کے ذروں یا چیونٹیوں کی طرح زمین میں آ گئی. اور جس طرح دنیا میں شکل و صورت ہے نا ہماری، کوئی خوبصورت ہوتا ہے، کوئی دبی بھی شکل کا ہوتا ہے، روحوں کی شکل میں بھی کہتے ہیں کہ فرق محسوس ہو رہا تھا. ایک بڑا خوبصورت واقعات بھی روایات میں آتا ہے کہ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کو پیدا کیا اور وہ بڑے خوبصورت تھے، تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا کون سا بچہ ہے، کیونکہ آدم کے تو سارے بچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے. کہا اچھا، بڑا پیارا بچہ ہوگا یہ میرا تو. کہا اچھا، اس کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی عمر بتا دی. مثال ہے کہ صحیح روایت کہیں آئے گی تو پڑھ کے بتاؤں گی، لیکن اس وقت صرف آپ کو ایک سٹوری کے انداز میں سناتی ہوں. انہوں نے کہا کہ اس کی عمر 70 سال ہوگی. تو اللہ تعالیٰ، حضرت آدم نے کہا اللہ تعالیٰ ان کی اتنا پیارا میرا بچہ صرف 70 سال جیے گا؟ کہا اچھا، پھر کیسا کرے، میری عمر کے 30 سال اس کو دے دے اور 100 سال اس کی عمر کر دیں. کہا ٹھیک ہے، آپ دے دیجئے 30 سال، ہم اس کو 100 سال کا کر دیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی جب ایک اس ایج پہ پہنچی، نبیوں کو پہلے سے بتا دیا جاتا تھا کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی، آپ کی موت کا وقت کب آنا ہے. اب ان کی موت کے اس وقت سے ابھی 30 سال پہلے کا وقت تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا. آدم جی، آپ کی تو جان نکالنی ہے. کہا میری کیسے نکالنی ہے، ابھی تو میرے 30 سال پڑے ہوئے. کہا وہ تو آپ نے اپنے وہ فلاں بچے داؤد کو نہیں دے دیے تھے؟ کہا میں نے کب دیے، ہاں میں تو بھول گیا. قرآن میں آگے ہم پڑھیں گے کہ فنسیہ آدم، آدم بھول گیا. کہا میں نے نہیں دیے، میں اپنے پورے کروں گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ پھر کیسے کس کے ساتھ ہوا، لیکن روحوں کی شکل میں ہم پیدا کیے گئے تھے. جنودم مجندہ کا لفظ ہے کہ تہوں کی تہیں تھیں. آپ سوچیے نا، کب سے دنیا بنی ہوئی ہے اور ابھی تک قیامت، ابھی قیامت تک پتہ نہیں اور کتنے لوگوں نے آنا ہے. تو ان سب سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے لے کے ہماری فطرت میں، ہماری انسٹنکٹ میں، ہماری میموری میں یہ ڈال دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ. اس لیے آج اگر ہم یہ کہیں کہ غیر مسلم گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کو تو کسی نے بتایا نہیں، نہیں بتایا، لیکن اس کی فطرت نے بتایا. یہاں وہ سبق دہرا لیجئے جو پیچھے میں نے بہت دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، کہ اللہ کو پانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں. یعنی کوئی اللہ کو مانے، اسلام کو پائے، حق کو پائے، اس کے 4 طریقے ہیں. نمبر 1 یہ، یہی جو اب ہم نے دیکھ لیا اس وقت، ہم سب انسانوں کی، چاہے وہ اب ہندو ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، کسی مذہب سے، گورا کالا، ہر ایک بچے کی فطرت میں، پروگرامنگ میں یہ ڈلا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ 2 سال کا ہونے تک بچے کو یہ عہد بالکل یاد ہوتا ہے. جب اس کی زبان کھلتی ہے نا، پھر بھول جاتا ہے. جتنا کوئی انسان زندگی میں گناہوں میں پڑتا جائے گا نا، اتنا اس کو یہ وعدہ یاد نہیں رہے گا، بھول جائے گا. اور جس کی زندگی جتنی نیکیوں والی، فطرت پہ بہت نیچرل وے آف لیونگ ہوگا نا اس کا، اس کو یہ وعدہ یاد ہوگا. ایک صحابی تھے، ایک محدث ہے میرا خیال، میں بھولوں نہ تو امام دحاق تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے آج بھی یہ عہد ایسے یاد ہے جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. بچے کے چہرے پہ یہ جو ایک معصومیت ہوتی ہے نا، انوسنس، وہ بھی اس عہد کی وجہ سے ہوتی ہے، پیور ہوتا ہے. آج بھی جو جتنا اللہ سے پیار کرے گا، جتنا نیک ہوگا نا، وہ انوسنٹ ہوگا. اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے چہروں پہ عجیب سا ایک سختی آنے لگتی ہے. تو پہلی چیز سمجھ گئے، ہر ایک اس میں برابر ہے، سب کو دے دیا اللہ نے. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وزڈم. یہ کیا ہے؟ انسٹنکٹ یا جبلت، یہ سب کی ایک ہے. دوسری چیز ہے عقل، وزڈم. ہر انسان کی وزڈم اس کو بتاتی ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے. یہ بارش ایسے ہی نہیں ہو رہی، یہ پہاڑ ایسے ہی نہیں کھڑے، اس دنیا کا ایک مقصد ہے. ہر ایک سوچے گا تو اس کو اس کا جواب یہی ملے گا کہ آخر اس دنیا کے پیچھے کچھ ہے. عقل سے پوچھیں، رات ہوئی پھر دن ہوا، دن آیا رات گئی، سردی گئی، گرمی آئی، برف آئی، خشکی آئی، یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی کر رہا ہے. اللہ نے ہر ایک، اس میں بھی کافر اور مومن ایک جیسا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کافر کو گھاس سب کالے رنگ کی دکھے اور مومن کو سبز دکھے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی سب برابر ہیں. دو باتیں، دو कोई इक्वलिटी आ गई ना, हर एक को दे दी। तीसरी चीज़ अगर आप गौर करके देखें तो ये कायनात, इसके ऊपर गौर व फिक्र तदब्बर, इसकी सलाहियत अल्लाह ने हर एक को दी। इन नफ़े खल्क समावाती वल अर्द, अब यहाँ तक दुनिया के सब इंसान बराबर हैं। एक चौथी चीज़ जिसको रेवेलेशन कहेंगे, वही जो अम्बिया कराम के ज़रिए से आती थी। हम मुसलमान इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि हमें वो फोर्थ सोर्स भी मिल गया कि नबियों ने आके बताया कि कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, के लोगों अल्लाह को एक मानो, राइट। ईसाइयों को उनके वक्त में उनके नबियों ने बता दिया, जिस ज्यूज़ को उनके नबियों ने बता दिया। आज अगर जिनको हम कहते हैं ना कि लादीन या बेदीन लोग हैं, बस उनके पास ये एक सोर्स डायरेक्ट नहीं पहुँचा और वो हम मुसलमानों को अल्लाह ने कहा था कि इन नॉन मुस्लिम्स को बताओ। आज हम मुसलमान अपनी ये जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे ना, इसलिए ज्यूज़ क्रिश्चियन और जो भी पेगन रिलीजन है ये क़्यामत के दिन कहेंगे जाके कि अल्लाह हमें तो बताते ही नहीं थे ये। तो फिर कहा जाएगा कि अच्छा वो दो बातें तुम्हारी रूह में फितरत में ये पुकार थी, एक औरत थी वो खुदा को नहीं मानती थी, फिर किसी मौके पर उसने कहा बाय गॉड, कोई मुश्किल आई तो कहा बाय गॉड, तो उसकी दोस्त ने कहा ये तुमने किसको पुकारा, तुम तो खुदा को मानती नहीं। कहती पता नहीं मेरे अंदर से आवाज़ आई है। फिर इसी तरह एक क्या मैं वाक्य पढ़ रही थी कि किसी बहुत बड़ी वो मुश्किल में थी और उसको नामुमकिन लग रहा था कि मेरा काम होगा, एकदम उसको खबर मिली कि उसका वो काम हो गया, तो अपनी जगह से उठी और ज़मीन पे उसने सर रख दिया। दूसरे ने देखे उसको कहा ये तुमने क्या किया, कह रही पता नहीं मैं इस खुशी की खबर को सहार नहीं सकी और मुझे ऐसे लगा कि मैं उठ के अपना माथा नीचे रख दूँ। का अच्छा तुम्हें पता है इस तरह से तो ये मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं सजदा। का अच्छा, कहती इस बात से फिर मैंने रिसर्च शुरू की, फिर मैं मुसलमानों के पास आई, जब मुझे पता चला कि दिन में ये इतनी दफ़ा ज़मीन पे माथा टेकते हैं तो मुझे लगा कि जो मेरी फितरत की पुकार थी ना वो इस मज़हब में, और वो मुसलमान हो गई। तो लिहाजा अल्लाह ने हर हुज्जत तमाम की है, अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं करेगा, आग में नहीं डालेगा। आज हम अगर इस पुकार को ना सुने तो और बात है, यहाँ से फिर आपको एक निगेशन भी मिलता है। आज क्रिश्चियनिटी में जो ख्यालात ये जा रहे हैं ना वो क्या हैं कि इंसान शुरू में भटका हुआ था, एवोल्यूशन के ज़रिए भटकता भटकता फिर अल्लाह तक पहुँचा। वो क्या सुनाते हैं कहानियाँ कि इंसान शुरू में बहुत सारे खुदाओं को पूछता था, बड़े मिथ थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसने गॉड को डिस्कवर किया। ये झूठ है, इस्लाम बिल्कुल इसका अपोजिट कहता है। सब लोग सब शुरू में एक अल्लाह को मानते थे, डिविएशन जो है वो तौहीद से शिर्क की तरफ गया है। ना कि आप ये कहें कि पहले इंसान जंगलों में भटका, पत्ते लगाता था, बंदर था, ये था वो था, फिर पलट के अल्लाह की तरफ आया, तो अल्लाह ताला ने ये हुज्जत तमाम की। फिर इसमें एक दो सवाल जहन में आ सकते हैं, उसका तस्करा कर दूँ कि आप में से कोई कह सकता है जी हमें तो याद ही नहीं, जब याद ही नहीं तो फिर हम माने कैसे। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आप जिस दिन पैदा हुई थी वो दिन आपको याद है, याद है आपको कहाँ पैदा हुई थी, किस बेड पे थी, आपकी अम्मी ने क्या कपड़े पहनाए थे? नहीं पता ना। हम किस पे ट्रस्ट कर लेते हैं इस मामले में? अपने माँ बाप पे। हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि भई आप नॉर्वे में पैदा हुए थे तो हम मान जाते हैं, वो कहते हैं आप अमेरिका में पैदा हुई थी हम मान जाते हैं, किस हॉस्पिटल में हुए थे इधर हुए थे मानते हैं। तो जिस तरह हम बचपन के मामले में अपने पेरेंट्स की बात पर यकीन कर लेते हैं, तो जब हमारी रूहें पैदा हुई तो अल्लाह की बात पर यकीन कर लें, ठीक है ना, कोई शक की बात तो नहीं है। फिर इसमें एक दो लफ्ज़ जो है उनको थोड़ा सा देख लीजिए। एक लफ्ज़ है ज़ुर्रियत, इसका रूट लिख लीजिए, ज़ाल रा या इसका रूट होता है और हमज़ा भी होता है। ज़र उन या ज़ुर्रिया, ज़रा से है पैदा करना या फैलाना, छोटी सी औलाद के लिए आता है। चींटियों को भी ज़र्रा कहते हैं। आप देखिए कि जो एंट्स होती है ना वो यूँ ज़मीन में फैल जाती हैं, इस तरह बच्चे भी फैल जाते हैं। एक घर में माँ बाप होते हैं, चार बच्चे होते हैं, और 10-15 साल में बेटा किसी मुल्क चला जाता है, बेटी कहीं चली जाती है। ये ज़रा है, फैलाना यानी स्प्रेडिंग के मानों में आता है। फिर इसके बाद एक और बात है कि अल्लाह ताला ने यहाँ गवाही का तस्करा किया है, शहीदा। तो गवाही कैसे ली थी, आप लोग पूछेंगे कैसे ली थी, तो नोट कीजिएगा कि गवाही दो तरह से ली जाती है। एक कॉल से, शहादत कौली, ज़ुबान से बोल के, जैसे मैं कहूँ कि आई स्वियर या आई विटनेस, आई गिव विटनेस दिस, या मैं ये गवाही देती हूँ, इसको शहादत कौली कहते हैं, ये ज़ुबान से बोल के दी जाती है। दूसरा तरीका होता है गवाही देना अपने हाल से, शहादत हाली, यानी ज़ुबान से हाल हुलिये से पता चल जाता है इंसान को कि ये भूखा है। कोई खुश हो तो उसके चेहरे से पता चल रहा होता है कि ये बड़ा खुश है। ठीक है, तो यहाँ कौन सी गवाही थी? ये सवाल उलमाए कराम ने उठाया कि क्या लोगों ने अपनी ज़ुबान से बोल के गवाही दी है, शहादत कौली थी या हाली थी। ठीक है, तो हदीस से साफ पता चलता है कि ये कौल बोला था, मैंने भी बोला था, आपने भी बोला था। एक डेविएटेड फ़िरका जो गुजरा है मोतज़िला, वो कहते थे नहीं हाल से दी थी गवाही, वो कहते नहीं ये मुमकिन नहीं वो नहीं, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि हमने उनसे पूछा था और उन्होंने जवाब दिया था। यहाँ आप आयत के अल्फाज पे गौर करके देख लीजिए, कालू बला, काल क्या है, कौल कुलना कहा, तो फिर इसमें अपने बात जहन में ये रखिएगा कि हम सब ने बोल के ये कहा था। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात हमें बता दी और इसी पे अमल करना है, इसी पे रहना है। और आप देखिए कि कुरान जो है ना, ये जिक्रा है, नसीहत है, ये हमें वही अहद याद करवाने के लिए आता है। पिछली आयतों में बनी इसराइल के अहद की बात है जो तौरात में लिया गया, तो यहाँ इंसानियत के अहद की बात है जो कि पूरी इंसानियत से लिया गया था। बात वाज़े, यानी हमें इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा करके अन अटेंडेड नहीं छोड़ा। ठीक है, जैसे हमारे माँ बाप हमारी तरबियत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने हमारी रूहों की तरबियत की है, हमारी रूहें मोमिन है, रूह किसी की बुरी नहीं होती। हम उससे गलत काम करा के उसको गलत चीज़ पे ले जाएं तो ले जाएं, वरना बिल्कुल नहीं। और इसकी रिवायत भी बड़ी खूबसूरत आती है, मुसनद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरफा वाले दिन नोमान जगह में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से अहद मीसाक लिया। यानी ये सब हुआ कहाँ, ये सारी सेरेमनी कहाँ हुई थी, अरफा पे हुई थी, यानी जहाँ पे हज के लिए हम जमा जाते होते हैं उस दिन पे हुआ था। और आदम की पुश्त से इनकी होने वाली तमाम औलाद को निकाला और इनको अपने सामने फैला दिया और इनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा, बला शहीदना, क्यों नहीं, हम सब रब होने की गवाही देते हैं। ये मुस्तद अहमद की रिवायत है। तो बहरहाल ये आलम खल्क से पहले की बातें हैं जिसमें इंसान टाइम और स्पेस से बिल्कुल आज़ाद होता है, तो ये हुआ था। और अल्लाह की रहमत है कि उसने कुरान में हमें ये सब कुछ बता दिया, और अब इसकी बुनियाद पे तो अब हमें बिल्कुल भी शिर्क नहीं करना। असल जो बात ये है ना, वो यहाँ ये है कि अब शिर्क की कोई दलील नहीं है। कभी भी कोई ये नहीं शिर्क कर सकता कहकर कि जी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, फिर मुझे तो किसी ने बताया नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई देखो, जैसे बच्चे माँ से पूछते हैं कि भाई देखें ना कि आप मुसलमान हैं तो हम मुसलमान हैं, तो मेरी फ़लाँ दोस्त है या हमारा फ़लाँ जो दोस्त है बच्चा, वो कैसे मुसलमान हो जाए जबकि वो तो किसी शिर्क वाले घर में पैदा हुआ है? तो उसका जवाब है कि अल्लाह ताला ने उसकी भी फितरत में ये सब कुछ रखा है, और अल्लाह की ज़ात को खूब अच्छी तरह पता है कि उसने अपने बंदों से क्या मामला कराना है। वो कभी भी किसी पर ज़्यादती नहीं करेगा। क़यामत के दिन लोगों का हिसाब इस अहद की बुनियाद पर होगा कि मैंने तुम्हें ये कह दिया था, बता दिया था, अब तुम मानते हो कि नहीं मानते। और दूसरी बात है कि अगर जो लोग मुसलमान घरों में पैदा होते हैं उनमें से भी तो कितने दीन छोड़ देते हैं, कितने इस्लाम छोड़ देते हैं। तो लिहाजा अगर कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है तो ये बिल्कुल सरासर फितरत की तरफ बुलाना है। अगर इंटेलेक्ट की बेस पे बात करें ना, तो जब हम किसी भटके हुए को या किसी ख्वाहिशों में पड़े हुए को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं तो हम बिल्कुल उसकी इसकी असल फितरत पर बुलाते हैं। आज इंसानियत में जो डिप्रेशन है उसकी वजह आपको यहाँ समझ आ रही है, फितरत से इनहराफ में वजह है। बस आप देखिए, आपको बहुत सर्दी लग रही हो तो आप फोकस नहीं कर पाते ना किसी चीज़ पे, बहुत गर्मी लग रही हो तो फोकस नहीं करते, लेकिन आप बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो तो हम फोकस करते हैं। बिल्कुल यही हमारी फितरत का तकाजा है। ये डिप्रेशन और स्ट्रेस और ये सारे जो प्रॉब्लम है आज के दौर के, उसकी वजह ये कि इंसान अपने रब को नहीं मानना चाहता, जबकि उसकी रूह भूखी है, उसको भूख लगी हुई है और वो ये सब कुछ जानना चाहती है।